आज के मुख्य समाचार में ब्याज दरें 7 साल के उच्चतम स्तर 2.35% पर, ईंधन उत्पाद शुल्क में कटौती की अवधि बढ़ाने की मांग और फॉक्सटेल और चैनल 7 ने $4.5 अरब के सौदे में AFL प्रसारण अधिकार बरकरार रखे। आज के बुलेटिन में रिजर्व बैंक ने लगातार 5वीं बार ब्याज दरें बढ़ाई हैं। नकद दर 0.5% बढ़कर 7 साल के उच्च स्तर 2.35% पर पहुंच गई है। कोषाध्यक्ष जिम चामस का कहना है कि इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई परिवारों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।
So interest rate rises do mean that Australians will have to make more hard decisions about how to make ends meet. And it also means more difficult decisions for governments, because higher interest rates mean a higher cost of servicing the $1 trillion of debt that has been left to us.
विपक्षी नेता पीटर डटन का कहना है कि फेडरल सरकार को ये बताना चाहिए कि वे जीवन यापन की लागत को कैसे कम करेगी। श्री डटन का कहना है कि सरकार को बिजली बिलों को कम करने के वादों को पूरा करने की जरूरत है।
People voted for this government on the basis that they would reduce their power prices by $275. That was the solemn commitment the Prime Minister gave to the Australian public. And he spoke about it, as I say, he and the Labor Party on 97 occasions before the election. He's not mentioned the figure once since that time.
Swatantra Senator David Pocock ईंधन उत्पाद कर में कटौती को और लंबे समय के लिए बनाए रखने का आह्वान कर रहे हैं। कर में अस्थायी 22% की कटौती महीने के अंत में समाप्त होने वाली है, क्योंकि फेडरल सरकार ने कहा है कि बजट दबाव के कारण उपाय को बढ़ाया नहीं जा सकता है। सेनेटर पोकॉक का कहना है कि जीवन यापन के दबाव के से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए कटौती को बढ़ाया जाना चाहिए।
Blunt way to provide savings. I certainly don't need a discount on my fuel, but there's a lot of people who do.
आपातकालीन सेवाओं ने न्यू साउथ वेल्स के बर्फीले पहाड़ों में लापता स्कीयर की तलाश में एक शव का पता लगाया है। बचाव दल 23 वर्ष के एक लापता व्यक्ति की तलाश कर रही थी, जो शनिवार की सुबह बैक कंट्री स्कीइंग के लिए निकला था। जब वे लौटने में विफल रहा, तब उसके परिवार ने रविवार को अधिकारियों को सूचित किया था। न्यू साउथ वेल्स पुलिस का कहना है कि एक हवाई तलाश में कल एक सुदूर इलाके में एक व्यक्ति को देखा गया, लेकिन उबड़ खाबड़ इलाके की वजह से हेलीकॉप्टर उतरने में असमर्थ रहा। आज अल्पाइन बचाव में प्रशिक्षित विशेषज्ञ पुलिस को उस जमीन पर भेजा गया जहाँ पर एक व्यक्ति का शव मिला है, और माना जा रहा है कि वह लापता स्कीयर का शव है। ऑस्ट्रेलिया में यूक्रेन के राजदूत ने यूक्रेन में मारे गए एक ऑस्ट्रेलियाई सहायता कर्मी को श्रद्धांजलि दी है। 27 वर्षीय जेड विलियम डानहे का वाहन रूसी तोपखाने की आग की चपेट में आ गया और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। क्वींसलैंड का ये व्यक्ति यूक्रेन में अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को चिकित्सा उपचार प्रदान कर रहा था। ABC से बात करते हुए यूक्रेन के राजदूत वासिल मोरोशनशेंको ने मिस्टर दानहे को नायक करार दिया है।
The biggest sacrifice any man can make is his life, and you must be really proud of your son, who's a hero. He's a hero in Australia. He's a hero in Ukraine. He's a hero.
कैनबरा के संसद भवन में सैकड़ों शरणार्थियों और उनके समर्थकों ने रैली की और सरकार से अस्थायी सुरक्षा वीजा पर अपना वादा निभाने का आह्वान किया है। द रेफ्यूजी एक्शन कोएलिशन का कहना है कि लेबर ने वीजा श्रेणी को समाप्त करने का वचन दिया था, क्योंकि इससे लोगों की स्थायी काम खोजने, उनके परिवारों को फिर से जुड़ने और टर्शरी शिक्षा तक पहुंचने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। अफगान पीस फाउंडेशन के तहरी नसरत का कहना है कि शरणार्थी केवल सुरक्षा और मुक्त आवाजाही के मूल अधिकार की मांग कर रहे हैं।
We have a lot of asylum seekers and refugees who have given their over 10 years of life in Australia working for the economy and adding to the economy of this government, but they have not been able to see their families for more than 10 years. So pretty much they're standing today and asking for justice, and they're not asking more. They're asking a clarity for the future. They're asking, we have to have a sort of protection. We want permanent residency so they can have a clear future.
विक्टोरिया के प्रीमियर डैनियल एंड्रूज ने राज्य की आपातकालीन कॉल टेकिंग प्रणाली में विफलताओं के लिए माफी मांगी है। शनिवार को जारी एक रिपोर्ट में पाया गया कि दिसंबर 2020 और मई 2022 के बीच 33 लोगों की मौत, लंबी एम्बुलेंस प्रतीक्षा समय और आपातकालीन फोन कॉल का जवाब मिलने में देरी से जुड़ी थीं। डैनियल एंड्रूज ने उन सुझावों को खारिज कर दिया है कि उन्होंने मीडिया की जांच से बचने के लिए जानबूझकर सप्ताहांत पर कम प्रोफाइल रखा था।
In terms of what I was doing, I was at home on Saturday. So if you think I was off doing something exotic, I wasn't. I was at home on Saturday and I was at home on Sunday. On Sunday, I was dealing with a rather sick child. That's just the fact of it.
उधर कनाडा में पुलिस एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही है जिस पर उसके भाई के ऊपर जानलेवा हमला करने का संदेह है। पुलिस माइल्स सैंडरसन की तलाश कर रहे हैं जो 10 लोगों की मौत और चाकूबाजी के संदिग्ध हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें उसके भाई डेमियन सैंडरसन का शव मिला है। सहायक आयुक्त रोंडा ब्लैकमोर का कहना है कि अभी तक कोई मकसद निर्धारित नहीं किया गया है।
That's still part of the investigation that will be ongoing for quite some time. We haven't established a motive at this point in time, but it is definitely part of the investigation.
And Miles could obviously be anywhere. Is there concern he could try and flee to the United States?
We have made notification to Canadian Border Services Agency, so they are aware of his wanted status. And any identification he would provide would indicate on police record checks that there's a warrant for his arrest.
उधर साउथ कोरिया के दक्षिणी क्षेत्र में आए शक्तिशाली तूफान के बाद करीब 20,000 घरों में बिजली नहीं है। आंधी तूफान के साथ लगभग 1 मीटर बारिश ने सड़कों को नष्ट कर दिया है और बिजली की लाइनें गिरा दी हैं। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज भी 68 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 54 रुपए और 22 पैसे हो गई है। अब खेल समाचार में फ्रांसिस टियाफो ने यूएस ओपन के चौथे दौर में राफेल नडाल को हराकर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में टेनिस चैंपियन की 22 मैचों की जीत का सिलसिला समाप्त कर दिया। 24 वर्षीय अमेरिकी अब नडाल 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 पर 3 घंटे 34 मिनट की जीत के साथ अपने करियर के दूसरे बड़े क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। नडाल ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा कि उनकी हार उनकी मौजूदा फिटनेस समस्याओं के कारण नहीं है।
All the thing that happened is we went to the fourth round of the US Open and I faced a player that was better than me and that's why I am having a complaint back home.
टियाफो 2006 में एंडी रोडिक के बाद न्यूयॉर्क में इतनी दूर तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के अमेरिकी व्यक्ति हैं। ये 2000 के बाद से पहला यूएस ओपन है जिसमें शीर्ष दो वरीय पुरुषों में से कोई भी क्वार्टर में नहीं पहुंच पाए हैं। आपको बता दें कि 2000 के मैच में नंबर वन खिलाड़ी आंद्रे अगासी दूसरे दौर में और पहले राउंड में नंबर दो खिलाड़ी गुस्तावो क्वाटेन खेल से बाहर हो गए थे। फॉक्सटेल, टेलस्ट्रा और सेवन नेटवर्क ने घोषणा की है कि उन्होंने $4.5 अरब के 7 साल के सौदे में AFL प्रसारण अधिकार बरकरार रखे हैं। चैनल 10 और पैरामाउंट द्वारा 10 वर्षों में 6 बिलियन की बोली लगाने की वजह से फॉक्सटेल और सेवन को उनके अंदाज से अधिक भुगतान करना पड़ा। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल बारिश की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक जाएगा। एडलेड में भी भारी बरसात के आसार और वहां का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहेगा और अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। मेलबर्न में धूप रहने की संभावना और यहां का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम 20 डिग्री रहेगा। कैनबरा में भी कल भी आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। सिडनी में 1 या 2 बौछार की संभावना और वहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम 19 डिग्री तक जाएगा। ब्रिस्बेन में कल मौसम साफ रहेगा और वहां का न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 22 डिग्री। डार्विन में धूप खिली रहेगी, वहां का न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 32 डिग्री तक जाएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 38 डिग्री। मौसम की जानकारी के साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।